हर एकादशी को हम वैष्णव आचार्यों की कथा सुनते आए हैं। पिछले 11 एकादशियों से श्रीपाद रामानुज आचार्य की कथा चलती आई है। उसके पहले एक एकादशी में हमने नाथ मुनि और यामुनाचार्य की कथा भी सुनी। पिछले एकादशी को कथा ये चल रही थी कि रामानुजाचार्य के जो गुरुजन थे, एक के बाद एक वैकुंठ लौट गए, अर्थात उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो सब काफी वृद्ध हो गए थे। इस समय रामानुजाचार्य मेलुकोटे में रहते थे। यादवाद्री इस पर्वत के ऊपर, जहां यादवाद्री पति नारायण भगवान निवास करते थे, साथ में संपत कुमार जो उनके उत्सव मूर्ति थी। यहां पर रामानुजाचार्य को खबर मिली कि चोलराज कोलोतुंग की मृत्यु हो गई है। कैसे मृत्यु हुई? राजा की गले पे घाव हो गया, बहुत सारे कीड़े आ गए, इसलिए उनका नाम हुआ कृमिकंठ। लेकिन यह भी बताया जाता है कि वेंकटेश्वर श्रीनिवास के चक्र से, सुदर्शन चक्र से उनके गले में लग गया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात भगवान बालाजी ने उनको मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उस राजा ने वैष्णवों के प्रति, खास करके कुरेश और महापूर्ण के प्रति बहुत अपराध किए थे। जब यह खबर मिली रामानुजाचार्य को, तो फिर वो मेलकोट छोड़कर वापस श्रीरंगम जाने की तैयारी करने लगे। वहां सारे भक्तों ने बहुत शोक किया, बल्कि यादवाद्री पति स्वयं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर उन्होंने यादवाद्री पति को बताया कि रंगनाथ का ही मुझे आदेश था कि मुझे हमेशा वहां रहना है श्रीरंगम में। केवल ऐसी परिस्थिति हुई जिसकी वजह से मुझे श्रीरंगम छोड़ के भाग जाना पड़ा। तो ये कहने पर यादवाद्री पति ने भी उनको अनुमति दे दी। कई साल वहां पर रह चुके थे रामानुजाचार्य मेलकोटे में, और वहां अर्चना की सारी पद्धतियां वगैरह स्थापित कर दी थी। कई शिष्य उनके वहां बने थे हजारों की संख्या में, और सभी लोग बड़े शोकग्रस्त हो गए जब रामानुजाचार्य निकल पड़े। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा कि शोक नहीं करना, मेरी मूर्ति है यहां पर और मैं मेरी मूर्ति के रूप में यहां पर निवास करता हूं। और इस तरह से भारी हृदय से रामानुजाचार्य वहां छोड़ गए। लेकिन दूसरी ओर उनके मन में यह आनंद भी था कि फिर से मुझे रंगनाथ जी का दर्शन होगा श्रीरंगम में। इस तरह से धीरे धीरे से वो निकल पड़े। आखिर में पहुंचे, बड़े धूमधाम से भक्ति भाव से उनका स्वागत हुआ श्रीरंगम में। वहां सारे भक्तों ने उनको खबर सुनाई कि चोलराज कुलतुंग ने कितने अत्याचार किए थे, सारे प्रांत में वैष्णव मंदिरों को तोड़ा था और वैष्णवों को तंग किया था। और ये सब सुनकर रामानुजाचार्य बहुत दुखी हो गए, और खास करके जब उन्होंने खबर सुनी कि गोविंद राज का मंदिर तोड़ दिया गया राजा के द्वारा, और वहां के भक्तों ने, पुजारियों ने गोविंद राज की मूर्ति तिरुपति के पास में जाकर छुपा दी थी। तो फिर रामानुजाचार्य, हालांकि उनकी आयु 100 वर्ष की हो गई थी, इतने वृद्ध हुए थे, फिर भी वो श्रीरंगम से श्री शैल या तिरुपति धाम की ओर निकल पड़े। वहां पर उन्होंने एक सुंदर मंदिर स्थापित किया, और वो मूर्ति का नाम क्या रखा? तिल्लई गोविंद राज, क्योंकि राजा के हाथ से बचाने के लिए एक वैश्य तिल्लई का हाथ था, जो कि एक वैष्णवी थी। और फिर लौटते वक्त रामानुजाचार्य अन्य कई स्थानों में गए, खास करके जहां पर अंडाल ने भगवान गोविंद भगवान सुंदर राज से प्रार्थना की थी कि मैं आपको 100 मटके मैं खीर और दही वगैरह खिलाऊंगी, अगर आप आओगे स्वीकार करने तो मैं 1000 खिलाऊंगी। तो रामानुजाचार्य ने इच्छा किया कि अंडाल की इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो वास्तव में उन्होंने बड़ा उत्सव किया वहां और बड़ा दावत हो गया, सारे भक्तों ने पेट भर के खीर दही वगैरह बहुत खुशी से खा लिया। और आपने ये भी कहानी सुनी थी कि किस तरह से कुरेश की दृष्टि वापस आ गई जब रामानुजाचार्य ने उनसे कहा था कि अब जाके वरदराज जी से कांचीपुरम में कुछ वरदान मांगो। वरदराज जी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो कुरेश ने क्या मांगा कि जिस व्यक्ति ने जो कि मेरा शिष्य था नालूराम, मेरे खिलाफ और रामानुजाचार्य के खिलाफ जाकर राजा कुलोत्तुंग को भड़काया, उसको उसके ऊपर आप कृपा करो। वरदराज जी ने कहा तथास्तु और पूछो, तो उन्होंने राजा कुलोत्तुंग के ऊपर कृपा करने के लिए याचना की। वरदराज जी ने यह भी स्वीकार कर लिया। जब रामानुजाचार्य को पता चला, सारे नगर के वासियों को भी पता चला कि कुरेश क्या चीज है, कौन है इस दुनिया में जो इस तरह के वरदान मांग सकता है उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने हमारे प्रति इतना अत्याचार और अन्याय किया हो, ये होता है एक महान भक्त का हृदय। और फिर रामानुजाचार्य ने थोड़ा बहुत डांटा और कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मेरा है और फिर मेरा अधिकार तुम्हारे शरीर के ऊपर है, और मैंने तुमसे कहा था कि ये 2 आंखें तुम ले लो। तो इसके ऊपर कुरेश बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि आज पहली बार मेरे गुरु ने मुझे उनका सेवक माना है और ये मान लिया कि मेरा शरीर उनकी संपत्ति है। फिर जब वो वरदराज जी के सामने आए, वरदराज जी ने कहा, और उस समय रामानुजाचार्य भी उपस्थित थे उनके साथ देखने के लिए कि इस बार अब देखते हैं ये क्या करते हैं, कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तो जब वरदराज जी ने पूछा कि क्या चाहिए, तो ठीक उस समय रामानुजाचार्य के लिए कोई अर्जेंट काम आ गया, उनको अचानक निकलना पड़ा। और उस समय कुरेश ने वरदान मांगा कि मुझे आध्यात्मिक दृष्टि दीजिए जो कि वैकुंठ में प्राप्त होता है। तो रामानुज लौट कर आए और उन्होंने सुना, अरे रे ये क्या कर दिया, मैंने वो दृष्टि के लिए नहीं मांगा, मैंने भौतिक दृष्टि के लिए मांगा था। तो फिर उन्होंने वरदराज जी से मांगा कि क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, केवल उनकी इच्छा पूरी करेंगे। तो वरदराज ने कहा ठीक है, लेकिन मैं दृष्टि दूंगा, लेकिन जो कुरेश है केवल मुझे देख पाएगा और आपको देख पाएगा। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भौतिक दृष्टि भी लौट आई कुरेश को। तो खैर ये सुंदर घटनाएं हुई और थोड़ी बहुत लीलाओं के बारे में भी हम सुन रहे थे, जैसे धोबी। धोबी के बारे में क्या लीला सुना हमने, एक बार उन्होंने रंगना जी के कपड़े धोए और जिस भावना से धोए थे उससे रंगना जी बड़े प्रसन्न हुए, रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और रामानुजाचार्य स्वयं ने जाकर उस धोबी ने धोए हुए कपड़े अर्पण किए भगवान को। और उनकी सिफारिश कैसे नकार सकते थे भगवान, इसलिए हमको अगर भगवान के पास जाना है तो उनके शुद्ध भक्तों की सिफारिश लेनी चाहिए, रिकमेंडेशन। तो फिर क्या वरदान दिया श्री रंगनाथ जी ने, हाँ जितने सारे धोबी वंश हुए, धोबी वंश में जो सारे पाप के सब नष्ट, खास करके जो कृष्ण भगवान के प्रति धोबी ने अपराध किया था उनको कंस के कपड़े न देकर उस धोबी के अपराधों को क्षमा कर दिया। इस तरह से लीलाएं हुई और रामानुजाचार्य श्रीरंगा में निवास करते अपने शिष्यों के साथ में, हजारों की संख्या में शिष्य हुए उनके। और जैसे हम पिछली बार और उसके पहले भी देख रहे थे कि रामानुजाचार्य के शिष्यों के समूह में कोई जाति का भेद नहीं था, नीच जाति के, ब्राह्मण जाति के, सब तरह के भक्त वहां उनके शिष्य समूह में शामिल थे। और ये हमें सुनकर आश्चर्य होगा कि इनको उनके शिष्यों में से, हजारों शिष्यों में से 700 सन्यासी थे। ब्रह्मचारी कितने हुए होंगे? 12,000। और 300 केट्टी अम्मई थे। केट्टी अम्मई मतलब जो महिलाएं थी जिन्होंने वैराग्य का पद स्वीकार कर लिया था। और इसके अलावा जो गृहस्थ भक्त थे वो तो हजारों की संख्या में थे। इस तरह से रामानुजाचार्य श्रीरंगम में भक्ति के ऊपर प्रवचन देते, कथा करते, रंगनाथ जी की सेवा करते, वहां के मठाधीश थे और रंगनाथ जी के मंदिर के कार्य को संभालते। तो आज हम उनके थोड़े बहुत थोड़े शिष्यों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके शिष्यों का संबंध रामानुजाचार्य के साथ क्या था और दोनों के बीच में, शिष्य और गुरु के बीच में किस तरह का प्रेम का आदान प्रदान हुआ। बहुत सुनने लायक घटनाएं और लीलाएं हैं। कहा जाता है कि एक वृक्ष को फलों से पहचाना जा सकता है। नीम का फल खाइए और आम का फल खाइए, आप समझ पाएंगे कि ये झाड़ कैसा है वो झाड़ कैसा है। उसी तरह से गुरु को पहचानने के लिए आप शिष्यों को देख सकते हैं। तो पहले शिष्य जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे उनका नाम है आंध्र पूर्ण या वटु पूर्ण। इनका नाम आपने कहां सुना था, किस संदर्भ में सुना था? आंध्र पूर्ण, जब रामानुजाचार्य थोड़े शिष्यों के साथ भाग पड़े थे श्रीरंगम से और मेलकोटे की ओर जा रहे थे, वहां वो शालिग्राम नाम के गांव में रुके थे और उस गांव में उनकी मुलाकात हुई अंध्रपूर्ण से, जो कि एक ब्राह्मण थे वहां के, और वो उनके शिष्य बन गए। हालांकि उनके पहले कई शिष्य हुए थे लेकिन अंध्रपूर्ण की जो श्रद्धा रामानुजाचार्य में थी वो अपूर्व और अतुलनीय थी। जिस तरह से अंध्रपूर्ण ने उनकी सेवा की उससे ये पता चलता था कि वो उनके सबसे कट्टर भक्त थे, सबसे कड़क शिष्य थे। कभी भी अपने गुरु की सेवा छोड़ते नहीं थे और अपने निजी उदाहरण से उन्होंने दिखाया कि कैसे, किस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। इसके बारे में कई छोटी छोटी लीलाएं बताई जाती हैं। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम के 10 मील उत्तर में एक तीर्थ स्थान में, वहां जो मंदिर है वहां, उस मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए गए और पास में वहां नदी में स्नान करने के लिए जब गए तो उनके साथ में जो बक्सा था जिसमें कि उनके सामान थे, अच्छे कपड़े थे और उनके जो पूजा करने की जो सामग्री थी और उनके पूजा करने की मूर्तियां भी थी वहां पर, और उस समय जब उन्होंने उनका बक्सा खोला तो वो हताश हो गए, हैरान हो गए ये देखकर कि आंध्रपूर्ण ने रामानुजाचार्य के पादुकाएं उनके रामानुजाचार्य के पूजा के मूर्तियों के ऊपर रखा है। समझ गया? पूजा करने की मूर्ति बक्सा के अंदर है और उनके ऊपर रामानुजाचार्य के पादुकाएं रखे हैं। तो रामानुजाचार्य हैरान हो गए और आंध्रपूर्ण को बुलाया, अरे तुमने इतना बड़ा अपराध किया, भगवान के अर्च विग्रह के ऊपर मेरे पादुकाएं रखे। तो आंध्रपूर्ण ने झट से जवाब दिया, क्या मेरे भगवान आपके भगवान से कोई कम है क्या? रामानुजाचार्य को उत्तर नहीं दे पाए, मतलब वो रामानुजाचार्य को अपना ही आराध्य देव समझते थे। ये नहीं कि वो भगवान में, ये मायावाद तरह का विचार नहीं था। मायावादी लोग क्या कहते हैं कि गुरु ही भगवान है। जो भक्त होते हैं वो गुरु को भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन जानते हैं कि गुरु भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिनिधि है। तो ये श्रद्धा थी आंध्रपूर्ण की। और कई बार ऐसे होता कि जब रामानुजाचार्य के साथ वो जाते, हमेशा छाव की तरह उनके पीछे पीछे रहते सेवा करने के लिए, जब रामानुजाचार्य मंदिर में जाते, दर्शन करते, भगवान के सुंदर मुखारविंद को देखते, तो आंध्रपूर्ण भगवान को देखने के बजाय रामानुजाचार्य का चेहरा देखते रहते। तो एक बार रामानुजाचार्य ने आंध्रपूर्ण से कहा कि अरे पुत्र, तुम रंगनाथ जी के सामने आए हो, उनका सुंदर मुखारविंद देखने के बजाय तुम मेरे पास क्यों देख रहे हो? तो उस समय आंध्रपूर्ण ने उत्तर दिया कि ये आंखें केवल आपको देखने के लिए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इस तरह से आंध्रपूर्ण की श्रद्धा थी। और एक बार हुआ ये कि अक्सर जब रामानुजाचार्य प्रसाद ले लेते, जो भी उनका अवशिष्ट रह जाता वो आंध्रपूर्ण को दे देते, आंध्रपूर्ण उसका सेवन कर लेते। अब वैसे जब हाथ प्रसाद ले लेते हैं तो हमें हाथ धो लेना चाहिए, ये हाथ को पोंछ लेना चाहिए। जैसे हम तीर्थ लेते हैं, चरणामृत लेने के बाद हम क्या करते हैं, सर में पोंछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बूंद रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो भगवान से अभिन्न है, भगवान का प्रसाद है, तीर्थ है, इसलिए धोते नहीं, हम उसको सर पे लगा लेते। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि आंध्रपूर्ण ने उनका महाप्रसाद का सेवन करने के बाद अपने सर पे हाथ पोंछ लिया। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ये ठीक नहीं, मेरा जो अवशिष्ट है उसके लिए तुम्हें हाथ धोना चाहिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रसाद सेवन करने के बाद मुझे हाथ धो लेना चाहिए। अगले दिन उन्होंने रंगनाथ जी का महाप्रसाद उनको दिया आंध्रपूर्ण को सेवन करने के लिए। तो आंध्रपूर्ण ने वो सेवन कर लिया और फिर हाथ धो लिया। तो उस समय फिर रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि अरे ये तुमने क्या कर लिया, ये जो महाप्रसाद है इसका हर कण भगवान से अभिन्न है, तो ये तुम्हें सर में पहुंचना चाहिए था। तो आंध्रपूर्ण ने कहा, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, आपने जो मुझे कहा था कि आपको हाथ धोना चाहिए मैंने धो लिया। कहने का मतलब है कि जब साधारण आध्यात्मिक दृष्टि से उनको हाथ धोना चाहिए था उस समय सर पहुंच दिया, और जब सर पहुंचना था तो हाथ धो लिया। उनके मन में ये श्रद्धा थी कि रामानुजाचार्य मेरे लिए रंगनाथ से कम नहीं है, क्योंकि ये रंगनाथ के इतने प्रिय हैं। एक बार ऐसे हुआ कि आंध्रपूर्ण रामानुजाचार्य के लिए दूध गर्म कर रहे थे। उस समय रंगनाथ जी के मंदिर से स्वयं रंगनाथ जी अपनी उत्सव मूर्ति में बाहर आए शोभा यात्रा के लिए, जैसे अक्सर हुआ करता है पालकी में। और ये सुंदर दृश्य देखने के लिए, जिसमें भगवान के शरीर पे सुंदर श्रृंगार था, फूलों की मालाएं थीं और नाना प्रकार के रत्न से सुशोभित थे वो, तो सारे लोग अपने अपने आश्रमों से घरों से बाहर आए दर्शन करने के लिए भगवान का। और रामानुजाचार्य भी जल्दी से बाहर गए, लेकिन अकेले आंध्रपूर्ण अंदर रह गए। जब रामानुजाचार्य ने ये देखा, बाद में पूछा उनसे कि अरे आंध्रपूर्ण, तुम अंदर क्यों रह गए, भगवान की पूजा करने के लिए बाहर नहीं आए? भगवान दर्शन देने के लिए आए और तुम अंदर रह गए? तो आंध्रपूर्ण ने उत्तर दिया कि अगर मैं बाहर भगवान की सेवा या उनकी पूजा करने आता तो मेरे अंदर के भगवान की सेवा वो रह जाती। आप प्रत्यक्ष मेरे लिए आराध्य हैं, पूजनीय हैं, तो आपकी सेवा के लिए मुझे यहां दूध गर्म करना था, और इस दूध को छोड़कर मैं बाहर आता तो यहां पर दूध या तो जल जाता या तो सब वेस्ट हो जाता। इस तरह से आंध्रपूर्ण की श्रद्धा थी। एक बार आंध्रपूर्ण जो कि गृहस्थ थे, उनके घर में उनके थोड़े रिश्तेदार आए। ये रिश्तेदार शायद भक्त नहीं हुए होंगे, लेकिन रिश्तेदार थे तो उनको घर में स्थान देना पड़ा। वो रहे थोड़े समय के लिए और उनको उन्होंने भोजन खिलाया, प्रसाद खिलाया। बाद में ये रिश्तेदार चले गए। आप तो जानते हैं कि उस जमाने में मिट्टी के बर्तनों में सब कुछ खाया पिया करते थे, पकाया भी करते थे उसमें। तो उनके जाने के बाद अंधरपुर ने ये सारे जो मटके हैं बर्तन सब बाहर फेंक दिए और तोड़ दिए। और फिर दाशरथी जो कि रामानुजाचार्य के और एक प्रमुख शिष्य थे, उनके घर के पीछे जो दाशरथ ने फेंके हुए जो मट्टे के बर्तन थे वो लाकर उनमें फिर पकाना खाना, उनमें से खाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि आंध्रपूर्ण ये जानते थे कि भले कोई रिश्तेदार हो कोई हो, जो भगवान के भक्त नहीं है उनका क्या महत्व है? लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके जो अवशिष्ट के जो बर्तन वगैरह हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और आंध्रपूर्ण ने अपने गुरु रामानुजाचार्य के पदचिन्ह की स्थापना की वहां पर शालिग्राम में, उनके गांव में, और उनके रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों के लिए उनका यही आदेश था कि यही चरण कमल तुम्हारे जीवन का अनमोल धन है, इनकी सेवा करते रहना और कभी इसके प्रति अपराध नहीं करना, ये अच्छी तरह से जान लो, यही मेरा एकमात्र आदेश उपदेश आप सबके लिए है। इतने निकट थे आंध्रपूर्ण रामानुजाचार्य के कि उनको अष्ट दिग्गज में से एक माना गया है, दिग्गज मतलब हाथी। तो रामानुजाचार्य के आठ शिष्य थे जो आठ हाथी के समान थे, जो आठ दिशाओं में श्री वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों का संरक्षण करने के लिए, धर्म के रक्षण के लिए वो चुने हुए थे, उनमें से आठ। तो उनमें से एक थे आंध्रपूर्ण, और आंध्रपूर्ण ने रामानुजाचार्य के गुणगान में एक कविता लिखी जिनमें कई सुंदर श्लोक थे। रामानुज अष्टोत्तरशत नाम, और ये आज भी श्री वैष्णव दक्षिण भारत में रोज गाया करते हैं रामानुजाचार्य के गुणगान में। तो ये थे आंध्रपूर्ण और रामानुजाचार्य के बीच में प्रेम का संबंध। उनके एक दूसरे शिष्य थे जिनका नाम था अनंताचार्य। अनंताचार्य का नाम आपने कहा कब किस प्रसंग में सुना था, याद कीजिए, जो भी आप हर एकादशी में सुनते आए हैं, अनंताचार्य का नाम कहां सुना आपने? आपको याद है कि जब श्रीरंगम में बैठे रामानुजाचार्य नामालवर की सहस्र गीति के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो इस सहस्र गीति में श्री शैल धाम या तिरुपति धाम का वर्णन आता है, और इसको पढ़ के बहुत प्रभावित हुए रामानुजाचार्य और अपने शिष्यों से कहने लगे थे कि तिरुपति जैसा कोई धाम नहीं है, ये तो साक्षात प्रत्यक्ष वैकुंठ है, और यहां जो निवास करेगा और यहां जो अपना प्राण त्याग करेगा वो निश्चित ही मृत्यु के बाद वैकुंठ चला जाएगा। और ऐसे जब तीन बार सहस्र गीति पढ़ी और श्री शैल का उल्लेख आया, तो एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि क्या आप में से कोई श्री शैल तिरुपति धाम में जाकर श्री श्रीनिवास भगवान वेंकटेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार है, वहां जाकर फूलों का बगीचा बनाकर ये फूल फूलों के साथ श्रीनिवास भगवान के लिए फूलों की माला बनाना और फूल की सेवा करना जीवन भर, ये करने के लिए कोई तैयार है? इन सारे शिष्यों में से एक शिष्य ने अपना हाथ उठाया और कहा कि गुरुदेव मैं ये करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अब निकल पड़ता हूं। और उस समय रामानुजाचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया कि धन्य हो, तुम्हारे जैसा अगर शिष्य किसी गुरु को हो तो गुरु का जीवन भी धन्य हो जाता है। तो ये भक्त, ये शिष्य का नाम था अनंताचार्य। फिर अनंताचार्य वो भी गृहस्थ थे, अपने पत्नी को लेकर वो साथ चले गए तिरुपति, वहां पे छोटा सा घर बसाया, घर तो क्या, एक छोटी सी कुटिया थी, और वहां उन्होंने सुंदर बगीचा निर्माण किया। और इस बगीचे में वो बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखते, वहां के माली बने वो खुद, हालांकि इतने बड़े पंडित थे, लेकिन दिन भर इतना सुंदर काम करके उन्होंने बगीचा बनाया फिर इन सुंदर फूलों से वो सुंदर फूलों की माला बनाते और श्रीनिवास भगवान वेंकटेश्वर को ये हार अर्पण करते। इस तरह से उनका समय बीत रहा था, कई साल बीत गए और अब अनंताचार्य बूढ़े भी हो गए थे। तो इस समय उनके मन में विचार आया कि अभी पानी की तकलीफ हो रही है और यहां फूलों के सिंचाई के लिए वगैरह पानी की आवश्यकता है, नहीं तो मैं श्रीनिवास भगवान को फूल कैसे अर्पण कर सकता हूं, माला कैसे बना सकता हूं, और साथ साथ यहां के जो लोग हैं वो भी पानी के अभाव के कारण तड़प रहे हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे, तो मुझे यहां एक सरोवर बनाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ खुद वहां खुदाई चालू कर दी, हालांकि काफी बूढ़े हो गए थे। बूढ़े तो उतने बूढ़े नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी पहले जैसे उतने जवान तो थे नहीं, और इस तरह से खुद काम करने लगे। जैसे जैसे काम करते और सरोवर बनता गया, खुदाई चलती गई, और अचानक एक नवयुवक ब्रह्मचारी उनके पास आए। जब वो अपने सर में मिट्टी की टोकरी लेकर जा रहे थे, इधर से उधर फेंकने के लिए जा रहे थे, तो उस युवक ने कहा कि गुरुजी, आपकी उम्र हो गई है और आप ये सब भारी भारी काम कर रहे हैं, आपको शरीर के लिए ठीक नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। तो अनंताचार्य ने उत्तर दिया कि मैं, ये मेरी सेवा है, अगर मैंने ये त्याग दिया तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा, और तुमने इसको स्वीकार किया तो तुम बेहोश हो जाओगे, इसलिए जाओ। तो वो लड़का चला गया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि नहीं नहीं, मुझे श्रद्धा रखिए, मैं ये सेवा करना चाहता हूं, मुझे दीजिए, आपके लिए ठीक नहीं है। तो अनंताचार्य ने कहा कि देखो, ये सेवा मेरा प्राण है, सेवा के बिना कोई जीने का कोई मतलब नहीं है, यही मेरा प्राण है। अगर तुमको भी प्राण चाहिए तो तुम भी उठाओ टोकरी और तुम भी काम करो, लेकिन मेरी सेवा में तुम दखलंदाजी मत करो। तो फिर वो भाग के वहां से चला गया, वो लड़का तरुण ब्रह्मचारी, और इस तरह से अनंताचार्य कार्य करने लगे। उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, लेकिन उनको भी सेवा में लगाया, और पत्नी भी टोकरी लेकर सर पे मिट्टी लेकर आ जाती, इधर फेंक देती। शुरुआत में तो काफी समय लग रहा था उनको ले आने के लिए, लेकिन इसके बाद अनंताचार्य ने देखा कि जल्दी जल्दी वो जाके आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि अरे, पहले इतना समय लग रहा था वहां जाके मिट्टी ले आना, यहां फेंकना, अब तो इतने जल्दी तुम्हारा काम हो रहा है, क्या बात है? तो फिर पत्नी ने उत्तर दिया कि आधे रास्ते में ही मुझे एक ब्रह्मचारी मिल गया, तरुण ब्रह्मचारी, और उसने कहा कि माताजी, आप कष्ट ना करें, आप मुझे दे दीजिए, और इसलिए मैं केवल आधा रास्ते जाती हूं, वो बाकी का ले आके मुझे मेरा काम कर देता है, इसलिए मैं आधे रास्ते से लौट के आ जाती हूं, इसलिए मैं जल्दी आ रही हूं। तो अनंताचार्य को बहुत गुस्सा आया कि कौन है वो कंबक जो कि हमारी सेवा में इतना दखलंदाजी कर रहा है। तो गुस्से से वो उस लड़के के पास गए और उनके हाथ में एक अस्त्र था खुदाई करने के लिए, उससे केवल अपने थोड़े मिलते हैं ना चिन्ह, थोड़े को उन्होंने इस तरह से कहा कि ऐ बदमाश, तुम मेरे सेवा में क्यों दखलंदाजी करते हो, चलो निकल पड़ो, तुम्हारे जो कष्ट के लिए यही तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, और ऐसे उनको थोड़ा हल्के से आक्रमण कर दिया इधर गुस्से में, और वो लड़का डर के भाग गया। तो ऊपर मंदिर में जो पुजारी थे उन्होंने देखा कि अचानक श्रीनिवास भगवान वेंकटेश्वर के थोड़े से खून बह रहा है, वहां घाव हो गया उनको, और ये खबर सब जगह पहुंच गई, अनंताचार्य को भी खबर पहुंच गई। तब अनंताचार्य ने सोचा कि अरे, वो बच्चा, वो लड़का कौन था, स्वयं बालाजी वेंकटेश्वर भगवान श्रीनिवास थे। तो उधर ऊपर पुजारियों ने उनको कर्पूर लगाया उस घाव में, और फिर वो खून आना बंद हो गया। और ये जो प्रथा है, ये रिवाज आज भी चल रहा है तिरुपति में, आज भी भगवान के ठोड़े में ऐसे कर्पूर लगाया जाता है, और फिर ये कर्पूर प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच में बांटा जाता है। तो खैर उन्होंने अपना काम जारी रखा अनंताचार्य ने, आखिर सरोवर बन गया और आज भी ये शैलधाम में अनंत सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो सुंदर सरोवर बनाकर भगवान की सेवा इस और वहां के धाम निवासियों की सेवा अनंताचार्य ने की। एक बार ऐसे हुआ कि अनंताचार्य कोई कार्य से बाहर जा रहे थे तो अचानक एक कोबरा सांप ने उनको धस लिया। लोगों को पता चला, उन्होंने कहा अरे अनंताचार्य जी आप तो दवाई लीजिए, जाइए कि वैद्य के पास जाइए और कोई उपचार करा दीजिए इसका। तो अनंताचार्य ने कहा नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वहां स्वामी पुष्करणी नाम के तालाब में सरोवर में जाके उन्होंने स्नान किया और वापस आके अपनी सेवा चालू की, कोई फर्क नहीं। तो उसके बाद जब वो श्रीनिवास जी का दर्शन करने के लिए ऊपर गए थे पर्वत के ऊपर, तो भगवान ने उनको पूछा कि अरे अनंताचार्य जब लोगों ने तुमसे कहा कि आप उपचार करा लो, कोई दवाई ले लो, और आपने कहा कि नहीं लेना है मुझे, कोई जरूरत नहीं है, तो आपके मन में क्या विचार आया था उस समय? देखिए ये लोग कितने महान भक्त थे कि भगवान उनके साथ वार्तालाप करते थे, वो समय था। कितने ऐसे उदाहरण देखे हमने कांचीपुरम में कांचीपूर्ण रामानुजाचार्य, और उधर रंगनाथ जी रामानुजाचार्य के साथ, कुरेश के साथ कितनी आदान प्रदान होता था, प्रेम का वार्तालाप हुआ करते थे। तो फिर अनंताचार्य ने उत्तर दिया कि मैंने सोचा ये दो सांप हैं, एक वो सांप जिसने डस दिया है और दूसरा सांप जो डसा गया है, मतलब मैं खुद अपने आप को सांप की तरह समझते थे, क्योंकि सांप जो होता है वो ईर्ष्यालु प्राणी होता है, हमेशा दूसरों की ईर्ष्या करता है, दूसरों के ऊपर कोई हमला करता है, नुकसान करता है बिना वजह के। तो जो भक्त होते हैं उनमें तो सारे अच्छे गुण होते हैं, परंतु नम्रता की वजह से अपने आप को भी वो नीच समझते हैं। तो अनंताचार्य भी अपने आप को एक सांप के समान समझ रहे थे, हालांकि वो इतने महान भक्त हैं वास्तव में। तो मैंने सोचा कि एक सांप ने दूसरे सांप को काट दिया, और अगर जो सांप काटा गया अगर वो ज्यादा शक्तिशाली है तो स्वामी पुष्करणी नदी में स्नान करने के बाद उसे कुछ नहीं होगा और वो अपनी सेवा जारी रखेगा। अगर काटने वाला सांप ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर काटा हुआ जो सांप है उसको जाना होगा विरजा नदी में स्नान करके, फिर वो वैकुंठ जाएगा और वहां वही सेवा फूलों की सेवा करेगा वैकुंठ में। तो दोनों दृष्टि से गति एक ही है तो कोई फर्क नहीं। तो रामानुजाचार्य तो वेंकटेश्वर भगवान ने ये बात सुनी और बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये थी श्रद्धा और ये संबंध था अनंताचार्य का वेंकटेश्वर भगवान के साथ में। एक बार अनंताचार्य श्री शैल से अपने गांव के लिए निकल पड़े थोड़े काम से, और साथ में थोड़ा प्रसाद डब्बे में बांधकर लेकर गए थे। और जब प्रसाद सेवन करने का समय हुआ दोपहर में, तो किसी अच्छे स्थान पर बैठे और अपना बक्सा खोल दिया, और वहां उन्होंने अंदर देखा कि अरे इतनी सारे चींटियां आ गई, हैरान हो गए। और हैरान होकर सोचने लगे कि ये कैसे हुआ, मैंने ये सब कैसे किया। अगर हम ऐसा कोई टिफिन लेकर जा रहे हैं और हमारे टिफिन में हमने सब चींटियां भर के चींटियां देख ली तो हमें भी गुस्सा आएगा, लेकिन किस बात के ऊपर गुस्सा आएगा, किस बात के ऊपर गुस्सा आएगा कि आज खाने के लिए नहीं मिला हमको, ये चींटियों ने हमारा भोजन नष्ट कर दिया। लेकिन गुस्सा जो अनंताचार्य को आया वो किसके लिए था? उन्होंने सोचा कि सारे महान संत जितने भी हुए हैं वो इस श्री शैल धाम तिरुपति धाम का गुणगान करते हैं, और वो कहते हैं कि यहां कोई भी भगवान के धाम में जा सकता है, यहां जो निवास करता है, यहां के पत्थर, यहां के पेड़ पौधे, यहां के चींटी भी विशेष है, इनको भी वैकुंठ गति मिलने वाली है और ये सब भक्त हैं। तो मैंने इन चींटियों को जो कि धाम के वासी हैं उनको धाम से मैं दूर ले गया। देखो मैं कितना बड़ा अपराधी था। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर से पूरे वापस गए श्री शैल धाम, वहां उन चींटियों को छोड़ दिया और भोजन नहीं, फिर भी वापस चले गए। ये थे अनंताचार्य। देखिए महान भक्तों की बुद्धि कैसे चलती है, साधारण व्यक्तियों के समझ में नहीं आती है ये सब बातें। तो एक और ऐसे हुआ कि जब वो वहां मंदिर में बैठकर तिरुपति में फूलों की माला बना रहे थे, यमुनई तिरुवैन, ये तमिल शब्द उच्चारण करने में कठिनाई होती है, ये यमुनाचार्य के पीछे ये कमरा है, ये भी यमुनाचार्य का तमिल भाषा में नाम है, क्योंकि ये कृष्ण का नाम है वास्तव में, जिन्होंने यमुना के तट पर लीलाएं किए। यमुनाचार्य की कथा सुनते समय आपको याद होगा, यमुनाई तिरुवैन। तो इस कमरे में बैठकर वो फूलों की माला बना रहे थे श्रीनिवास भगवान के लिए। तो उस समय किसी पुजारी ने आके उनको बुलाया कि आपके लिए कोई काम है, कृपया आप आइएगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं आए। फिर माला बनाते गए, माला तैयार हो गई, माला तैयार होकर वो श्रीनिवास को अर्पण करने के लिए अंदर गए। उस समय वेंकटेश्वर भगवान ने उनसे पूछा कि अरे जब तुमको मैंने बुलाया था तुम क्यों नहीं आए थे मेरे पास, तो तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया। तो उस समय अनंताचार्य ने उत्तर दिया कि मेरा आपसे क्या लेना देना, मैं ये फूलों का माला बना रहा था और फूल ये खिले हुए थे, अगर इसमें मैं देरी करता तो इनकी सुगंध चले जाते, तो मैं कैसा हार आपको अर्पण करता। मेरी सेवा है आपको हार अर्पण करना, सुगंधित अच्छे अवस्था में होने चाहिए, और मैं इधर उधर चले जाता तो आपको किस तरह का हार मिलता। तो फिर श्रीनिवास भगवान ने उत्तर दिया, ऐसे तुम आज्ञा का पालन नहीं करते हो, मैंने तुमको यहां से निकाल दिया तो क्या करोगे। तो फिर वो उत्तर देने लगे कि देखो साधुओं ने बताया है आपका इतिहास, आप भी यहां थोड़े दिनों के लिए मेहमान हो, तपस्या करने आप आए हो यहां पर इस पर्वत के ऊपर, क्या हुआ आप मेरे से थोड़े साल पहले आए, ठीक है, लेकिन आप यहां थोड़े दिन के लिए मेहमान है, मैं भी हूं, तो ये आपका जितना है उतना मेरा भी है ये पर्वत, तो आप मुझे कैसे यहां से निकाल सकते हैं। तो फिर वेंकटेश्वर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो ये थे रामानुजाचार्य के शिष्यों की लीलाएं। इस तरह से अनंताचार्य अंत तक अपने प्राण त्याग करने तक ही तिरुपति श्री शैल धाम में निवास करते रहे, फूलों की माला बनाते रहे, यही उनका उनकी नित्य सेवा थी। तो भगवान को फूलों की सेवा बहुत पसंद है, और वैष्णव धर्म में भक्ति मार्ग में ये फूलों से भगवान को सजाना, सुंदर हार वगैरह माला बनाना भगवान के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए इनको भक्ति भाव से बनानी चाहिए। और ये कितना सौभाग्य हमारे लिए है कि अगर हमें ऐसा कोई मौका मिले जिसमें हम भगवान की अलग अलग तरह से सेवा कर सकें। हाँ, भगवान के मंदिर का मार्जन करना या अन्य सेवा करना भी भगवान के लिए उतना ही मूल्यवान है अगर भक्ति से किए जाए, लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो भी भगवान के लिए सेवा हम करते हैं, जैसे कि अनंताचार्य ने श्रीनिवास भगवान को जबकि वो ब्रह्मचारी के वेश पहनकर आए थे उनको उन्होंने बोला था कि ये सेवा ही मेरा प्राण है, तो उसी तरह से जो भी हमें सेवा का मौका मिलता है उसको हमें अपना प्राण समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि भगवान की सेवा के बिना हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति है वैसे है वो व्यक्ति जो भगवान की सेवा नहीं करता है। और एक सुंदर कथा है उनके और एक शिष्य के बारे में। जब रामानुजाचार्य श्रीरंगम में निवास करते थे, कई साल बीत चुके थे, रामानुजाचार्य काफी वृद्ध भी हो गए थे, तो वहां पर एक बहुत ही पुण्यवान सज्जन, शिक्षित नम्र सद्गुण संपन्न ब्राह्मण वहां पर आए और बड़े भक्ति भाव से नम्रता से वो रामानुजाचार्य के सामने आए, दंडवत करके कहने लगे कि आप जैसे महान भक्तों की सेवा करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए, कृपया मुझे कोई आदेश दीजिए, मैं क्या सेवा आपके लिए कर सकता हूं। रामानुजाचार्य पहचान गए कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं, इनके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, ये ढोंग नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर कोई छल कपट की बिल्कुल कोई लेश मात्र भी निशानी नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने थोड़े क्षण सोच लिया और कहने लगे कि कहा जाता है कि एक सच्चे भक्त वैष्णव ब्राह्मण के चरण कमलों का जो पानी है चरणामृत, वो अगर स्वीकार करें तो हमारे लिए मोक्ष और वैकुंठ प्रवेश का मार्ग जो है वो निश्चित है। तो अगर आप मेरी सेवा करना चाहते हो जैसा आप बोल रहे हो और आप तैयार हो मेरे आदेश का पालन करने के लिए, तो आपको मैं ये सेवा देता हूं कि रोज आपके चरणों का धोया हुआ जल मुझे आपको देना चाहिए। तो वो जो ब्राह्मण थे, इतने शुद्ध हृदय के थे, भोले थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है ये आपका आदेश मेरे लिए है, मैं तो आपका सेवक हूं, अगर इसी में आपकी खुशी है संतुष्टि है तो वही सही। हर रोज रामानुजाचार्य दर्शन करने जाते रंगनाथ जी का और दोपहर के समय आते और प्रसाद लेते, और उस समय ये ब्राह्मण अपने चरणों को, खुद के चरणों को धो लेते और वो जल उनको थोड़ा सा रोज रामानुजाचार्य को दे देते, और रामानुजाचार्य उस जल को लेकर अपने सर पर छिड़कते और अपने शिष्यों के सर के ऊपर भी छिड़कते। ये रोज का कार्य था, हर रोज ये हुआ करता था। तो एक दिन ऐसे हुआ कि रामानुजाचार्य को किसी एक गृहस्थ भक्त ने अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाया, तो अपने शिष्यों के साथ वो वहां गए और बहुत अच्छी तरह से प्रसाद का सेवन सबने किया, और उसके बाद में वहां कृष्ण कथा हो गई। कई शिष्यों ने तरह तरह के सवाल उनके सामने रखे और रामानुजाचार्य व्याख्यान करने लगे, और इस कृष्ण कथा में कैसे समय बीत गया किसी को पता ही नहीं चला, घंटों घंटों बीत गए। और जब उन्होंने देखा कि अरे सूर्यास्त हो गया और काफी रात हो गई, और फिर उन्होंने सोचा कि बहुत देर हो गई, अब चलो वापस चलते हैं, इसका मतलब है कि करीब करीब 7-8-10 घंटे भी शायद बीत चुके होंगे केवल कृष्ण कथा करते करते, किसी को समय कैसे बीता पता नहीं चला। तो जब रामानुजाचार्य अपने थोड़े बहुत शिष्य जो उनके साथ में गए थे उनके साथ वापस आश्रम में लौट कर आए, तो अन्य शिष्य जो आश्रम में थे वो सब सो गए थे, केवल ये ब्राह्मण वहां पर जगे हुए थे। तो रामानुजाचार्य ने उनको देखा और आश्चर्यचकित हुए कि अरे तुम सोए नहीं अभी तक, इतना देर हुआ, क्या तुमने खाया है ना, प्रसाद तो लिया ना। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं प्रसाद कैसे लेता और सोता कैसे, मैं मेरी सेवा जब तक मैं नहीं करूं तब तक मैं कैसे प्रसाद ले सकता हूं, कैसे मैं सो सकता हूं, क्योंकि आज की मेरी सेवा हुई नहीं, आप प्रसाद के बाद, आप दर्शन के बाद तुरंत प्रसाद के लिए गए, आश्रम में आए ही नहीं, तो मेरे चरणों का जल आपने स्वीकार किया ही नहीं आज। तो रामानुजाचार्य ने, अरे हाँ ये सही है, तो उन्होंने लिया, चरणों का धल लिया और फिर ब्राह्मण को आलिंगन किया। तो इस तरह से रामानुजाचार्य और उनके शिष्यों की लीलाएं चलती रही, और रामानुजाचार्य ने एक अपना नित्य कार्यक्रम, नित्य नियम बना लिया था कि इस ब्राह्मण के चरणों का जल उनको सर पे स्वीकार करना था। तो और एक शिष्य के बारे में बात करेंगे जो हर दृष्टि से देखा जाए तो शायद रामानुजाचार्य के सबसे महत्वपूर्ण शिष्य थे। उनका नाम जोर से बोलिए, कुरेश। कुरेश सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुद्ध भक्त, कट्टर भक्त, इतने श्रद्धालु, और वो शहीद भी हो गए, उन्होंने अपने आंखें भी त्याग दिए रामानुजाचार्य के लिए, वो कथा आप सबने सुनी थी। तो सबसे अच्छे आदर्श थे शिष्य के कुरेश। कुरेश के बारे में भी हम कथा सुन चुके हैं, किस तरह के परिवार से वो आए, कैसे वो इतने बड़े अमीर आदमी थे, कैसे उन्होंने सब राज्य, अपना जो धन वगैरह सब त्याग दिया, कैसे भिक्षा के ऊपर फिर अपना जीवन बिताते। तो इस समय श्रीरंगम में कई साल बीत गए और रामानुजाचार्य की आयु अब 110 साल से भी अधिक हो गई थी, इतने बूढ़े हो गए थे अभी, लेकिन फिर भी रामानुजाचार्य के हृदय में उत्साह कम। उतने ही उत्साह से वो वैष्णव दर्शन का, वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते और कई बार अपने भक्तों के साथ घंटों तक रहकर जो वैष्णव दर्शन के सूक्ष्म बातें हैं उनका उपदेश किया करते उनको। उधर कुरेश भी काफी बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, उनका शरीर भी कमजोर हो गया था। अब रामानुजाचार्य 110 साल हो गए थे, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कुरेश भी काफी वृद्ध हो गए थे उस समय। तो एक बार कुरेश रंगनाथ जी के मंदिर में गए, रंगनाथ जी का दर्शन जब कर रहे थे बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़कर, रंगनाथ जी ने उनसे पूछा, मतलब भगवान ने, मूर्ति ने उनका पूछा कि कुरेश मुझे लगता है कि आज तुम्हारे मन में कुछ विचार है, बोलो क्या विचार है तुम्हारे मन में। तो उस समय कुरेश के मन से स्वाभाविक रूप से एक सुंदर श्लोक बाहर निकला, भगवान का गुणगान किया उन्होंने और वो सुंदर श्लोक एक के बाद एक निकले, उनके ऊपर उन्होंने टीका भी की, कमेंट्री भी बताई। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि कुरेश मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूं कि मैं क्या कहूं, कोई भी वरदान मांगो तुम। तो उस समय कुरेश ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं, जितने वरदान आज तक आपने मुझे दिए हैं वो क्या कम है मेरे लिए, मुझे और कौन से वरदान चाहिए, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। फिर भी रंगनाथ जी ने कहा कि नहीं नहीं तुम पूछो, एक पूछो और पूछो, पूछो निश्चित पूछो, मुझे कोई वरदान देना ही है तुम्हें, मेरा जो प्रेम मेरे पत्नी श्री या लक्ष्मी देवी के लिए है और तुम्हारे प्रिय रामानुजाचार्य के लिए है, उस प्रेम के लिए तो तुम कम से कम मेरे से वरदान पूछो। तो फिर कुरेश ने कहा ठीक है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं, मेरे प्राण को त्यागूं और वैकुंठ में आपके चरण कमलों की प्राप्ति कर लूं। तो रंगनाथ जी ने सोचा अरे ये क्या पूछ लिया, कोई और वरदान मांगो मुझसे। तो कुरेश ने सोचा जवाब दे, मेरे मन में और कोई विचार ही नहीं आता है, तो बस यही एक वरदान है। तो फिर रंगनाथ जी ने उत्तर दिया कि ठीक है तथास्तु, लेकिन इसके अलावा मैं ये वरदान देता हूं कि तुमसे जो भी संबंधित है उनको भी वैकुंठ में मेरे चरण कमलों की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। तो इसके बाद कुरेश शांत हुए और बड़े आराम से बाहर निकले, ये जानते हुए कि अब उनके लिए परम पद वैकुंठ निश्चित है। और जैसे वो बाहर निकले खबर दावानल की तरह फैल गई सब जगह कि कुरेश ने क्या मांगा भगवान से। उधर रामानुजाचार्य अपने आश्रम में कोई काम से व्यस्त थे, उनके कानों में खबर पहुंच गई और जैसे ही खबर पहुंची उनके मन में, एक शिष्य ने सुनाई तो हालांकि 110 साल के थे वो ऊपर कूदे और अपने शरीर के ऊपर जो उतरिया है, मतलब ऊपर का जो कपड़ा है, वो ऊपर फेंक दिया हवा में और जोर से आनंद से जयघोष करने लगे। तो शिष्य ने पूछा कि ये क्या है, ये आपने क्यों किया ऐसे। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अरे ये जरा जानो भगवान ने क्या वरदान दिया कुरेश को कि तुमसे जो भी संबंधित है, जैसे तुम्हें मेरे चरण कमलों की प्राप्ति वैकुंठ में होगी, वैसे तुमसे जो भी संबंधित है उनको भी होगा। तो इसलिए मेरा जो मेरी मुक्ति है, मेरा कृष्ण भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति वैकुंठ में निश्चित है। तो रामानुजाचार्य को संशय क्यों हुआ था, क्योंकि हालांकि वो इतने बड़े भक्त थे आचार्य, लेकिन आपको याद है कि एक बार उन्होंने एक गुरु के आदेश का पालन नहीं किया था। कौन सा आदेश और किस गुरु का, गोष्ठीपूर्ण, गोष्ठीपूर्ण का कौन से आदेश पालन नहीं किया था, मंत्र दिया था उन्होंने दीक्षा के समय और रामानुजाचार्य से उन्होंने कहा था कि ये गुप्त मंत्र है, ये मंत्र खबरदार जो किसी को सुनाया, अगर सुनाओगे तो क्या होगा, नरक में जाओगे। लेकिन रामानुजाचार्य ने वो मंत्र सुना, उनके गुरु ने बताया था कि जो भी ये मंत्र का उच्चारण करेगा वो मुक्त हो जाएगा, वैकुंठ चले जाएगा, ये दुख के सागर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य ने क्या सोचा था, भले मैं नरक में जाऊं लेकिन इतने सारे लोग हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाएंगे, वैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने जाकर विष्णु मंदिर के पास वहां सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबको जोर से मंत्र बोल दिया, ओम नमो नारायणाय। और फिर जब उनके गुरु को पता चला, आग बबूले हो गए, आग क्रोधित होकर, कि तुमको पता नहीं मैंने क्या आदेश दिया था, तुमको मालूम है कि तुम्हारी क्या गति होगी मेरे आदेश का पालन नहीं करने की वजह से। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि नरक की गति होगी, तो फिर भी तुमने किया। तो रामानुजाचार्य जब उनके हृदय की बात बताई तो गोष्ठीपूर्ण ने क्या किया, उनका हृदय पिघल गया, उन्होंने आलिंगन किया और कहने लगे, मैं आज तक रामानुजाचार्य को समझा नहीं था, आज मैं समझ गया कि तुम कितने महान हो, कितने सच्चे भक्त हो तुम। तो हालांकि गोष्ठीपूर्ण का हृदय पिघल गया था, फिर भी रामानुजाचार्य के मन में थोड़ा बहुत नम्रता की वजह से संशय था कि मेरी भी परम पद की प्राप्ति निश्चित है कि नहीं। लेकिन अब जब रंगनाथ जी का वरदान कुरेश को मिला था तो अब रामानुजाचार्य संतुष्ट हो गए कि अब मेरा भी वैकुंठ जाना ठीक हो गया, क्योंकि मेरा भी कोई संबंध है कुरेश के साथ, भले मैं उसका गुरु हूं लेकिन फिर भी ये मेरा शिष्य मुझे वैकुंठ जी ले जाएगा। जो परम वैष्णवों के भावनाएं ऐसी होती हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने भी ऐसे अपने शिष्यों से कहा था, उन्होंने कहा कि जब वो खास अपने कभी कभी जो गुरु होते हैं उनको गुरु बनना पड़ता है, मतलब जैसे कभी कभी एक माता पिता अपने बच्चों के साथ कभी कभी उनको कड़क रहना पड़ता है, उनका कर्तव्य वो संभालते हैं, कभी कभी उनका स्वभाव अलग हो जाता है, बहुत ही प्रेम से बात करते हैं, मीठे मधुर ढंग से बात करते हैं, कभी कभी कड़क। तो प्रभुपाद जी को कभी कभी अपने शिष्यों से कड़क रहना पड़ता था, क्योंकि ये सब नए थे भक्त, किनको मालूम नहीं था। लेकिन कभी कभी जब वो अपने असली रूप में आ जाते, जो अपना उनका असली स्वभाव था, तो बिल्कुल उनका हृदय भक्ति और नम्रता से उभर आता। और ऐसे एक क्षण में प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप में से कोई शुद्ध भक्त बनो और मुझे वापस गोलोक वृंदावन ले जाओ, मुझे आशा है कि आप सब आपका जीवन सफल बनाकर शुद्ध भक्त बन के मेरे भी जीवन का मुझे मेरा भी जीवन सफल करोगे, मेरा उद्धार करोगे आप सब। प्रभुपाद को क्या आवश्यकता थी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के लिए, गोलोक वृंदावन जाने के लिए, उनका जाना तो निश्चित था। लेकिन फिर भी भक्त का स्वभाव ऐसे होता है, उसका हृदय ऐसे होता है कि वो उस अपने आप को हमेशा दूसरे वैष्णव के ऊपर निर्भर समझता है, चाहे वो वैष्णव उनके शिष्य भी क्यों ना हो। तो ये है वैष्णव। वैष्णव कभी भी स्वतंत्र भावना नहीं रखता, वैष्णव कभी भी अपने आप को अन्य वैष्णवों से अलग करना नहीं चाहता, या वैष्णव कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे दूसरे वैष्णवों की जरूरत नहीं है। वैष्णव कभी नहीं ये सोचता कि मैं इतना अभी प्रगति कर चुका हूं भक्ति में कि मैं अकेले अभी गोलोक वृंदावन जा सकता हूं और अन्य भक्तों का संग या उनकी कृपा या उनकी शुभेच्छाएं मेरे लिए जरूरी नहीं है। सच्चा वैष्णव ऐसे कभी नहीं सोचता। इसके विपरीत जो अच्छा वैष्णव होता है, जितना ज्यादा वो प्रगति करता है भक्ति में, उतना ज्यादा वो अपने आप को अन्य वैष्णवों के ऊपर निर्भर समझता है, और वो जान अपने हृदय में उसको ये निष्ठा होती है कि अन्य वैष्णवों के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई गति नहीं है, मेरे अंदर तो कोई अच्छे गुण नहीं है, अगर मैं टिका हुआ हूं ये केवल वैष्णवों की वजह से। तो इससे ये सिद्धांत देखा जाता है, आचार्य इसके ऊपर टीका करते हैं, इस घटना के ऊपर कहते हैं कि ऐसे भी देखा जाता है कि शिष्य भी गुरु के उद्धार का कारण बन जाते हैं। तो देखिए, कोई गुरु के भाग्य में भी रहता है ऐसे शिष्य मिलने के लिए, यह भी भाग्य से मिल जाता है, भाग्य से गुरु मिलते हैं और गुरु को भी भाग्य से अच्छे शिष्य मिलते हैं। अगर किसी को ऐसे शिष्य मिल गए जो केवल गुरु को तकलीफ देते हैं तो फिर गुरु के लिए कितना कष्ट होता है, लेकिन अगर ऐसे गुरु को कोई अच्छे अच्छे शिष्य मिले तो फिर वो गुरु का सौभाग्य कितना है। बार बार हम देखते हैं रामानुजाचार्य ने कितनी बार अपने शिष्यों का गौरव किया कि मेरा जीवन धन्य है कि ऐसे शिष्य मुझे हुए। लेकिन माधवेंद्रपुरी के साथ में हमें देखा, उनके दो शिष्य ईश्वरपुरी और दूसरे कौन थे, रामचंद्रपुरी, प्रामाणिक शिष्य थे ईश्वरपुरी। माधवेंद्रपुरी ने कहा, ईश्वरपुरी जैसा शिष्य मिला, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन रामचंद्रपुरी के बारे में क्या कहा, मृत्यु के समय जब माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और विप्रलंब सेवा में थे, विरह की भावना की अनुभूति कर रहे थे, और जैसे वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में रो रही थी, दुख कर रही थी, माधवेंद्रपुरी भी कर रहे थे। हमें याद रखना है कि ये तथाकथित दुख आध्यात्मिक आनंद का सर्वोच्च शिखर का आनंद है, लेकिन बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से दुख लगता है। जो ब्रजवासी रो रहे थे कृष्ण के विरह में, उनको अंदर ही अंदर सबसे ऊंचा सूक्ष्म आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो माधवेंद्रपुरी इन ब्रजवासियों के पदचिन्हों में चलते थे, उनकी भावना में वो कृष्ण भगवान से प्रेम करते थे। तो अपने मृत्यु के समय उन्होंने वो प्रसिद्ध श्लोक गाया था, जिसमें वो भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, अय दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदय त्वत अलोक कातरम किम दयित करोमि अहम। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे दीनों के नाथ, मैं अब आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो मेरी क्या गति होगी, मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा। ये भावना से माधवेंद्रपुरी उस समय शोक कर रहे थे, और उस समय रामचंद्रपुरी आए। रामचंद्रपुरी को भक्ति क्या है ये अच्छी तरह से समझ नहीं थी, वो ब्रह्मवाद में ज्यादा रुचि रखते थे, मतलब निराकार की प्राप्ति करना। तो उन्होंने अपने ही गुरु का तिरस्कार करना शुरू कर दिया कि अरे ये क्या कर रहे हो, रो रहे हो, जिस तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष है उसको तो शांत रहना चाहिए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत अवस्था में प्राप्त करके किसी व्यक्ति को न किसी चीज के बारे में शोक करना चाहिए न हर्ष करना चाहिए, तो आप ऐसे रो रहे हो, चलो निराकार ब्रह्म के ऊपर आप चिंतन करो। तो माधवेंद्रपुरी को आया बड़ा गुस्सा और बोला कि मूर्ख निकल जाओ मेरे सामने से, अगर मेरे मृत्यु के समय मैंने तुम्हारे मुंह देख लिया तो तुम तो क्या, मैं भी नरक चले जाऊंगा, तुम भी मुझे नरक खींच के ले जाओगे, इसलिए जाओ यहां से। आया कहा मुझे निराकार ब्रह्म का उपदेश करने के लिए, वैसे भी मैं यहां तड़प रहा हूं कृष्ण के विरह में, और ये मेरे दुख को और 100 गुना बढ़ा रहा है ये निराकार का उपदेश करके, तो ऐसे शिष्य हमें मिले, कितना दुर्भाग्य हमारा। तो देखिए शिष्य कैसा मिले, ये भी बहुत, गुरु को मिलना, शिष्य को मिलना, शिष्य को गुरु प्राप्त करना, गुरु को शिष्य प्राप्त करना, आदर्श गुरु आदर्श शिष्य, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी, आदर्श जोड़ी, आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य, अगर ये जोड़ी हो तो फिर सब बढ़िया है। अगर शिष्य बड़ा अच्छा हो लेकिन गुरु ढोंगी हो तो शिष्य को अच्छी गति नहीं मिल सकती। अगर गुरु प्रामाणिक हो लेकिन शिष्य अच्छे नहीं हो तो फिर गुरु के लिए भी कठिनाई, बहुत बहुत तकलीफ, फिर भी वो शिष्य अंतिम गति की प्राप्ति, सदगति की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस छोटी सी घटना से हम ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीख सकते हैं। तो फिर रामानुजाचार्य के मन में ये विचार आया आनंद का, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सोचा, उनके मन में ये बात बस गई कि अब कुरेश हमें छोड़ के जाने वाला है, तब जो उनका वो आनंद था वो गहरे गहरे दुख में परिवर्तित हो गया। फिर उनको वो बात आई कि कुरेश अभी हमको छोड़ के जाने वाले हैं, तब उनको बहुत दुख होकर वो तुरंत निकल पड़े और कुरेश के पास जाकर भर्त्सना करने लगे, उनको डांटने लगे कि कैसे तुमने ऐसे भगवान से मांग लिया कि मेरा मुझे प्राण त्यागना है, मुझे वैकुंठ जाना है। उस समय कुरेश निरुत्तर हो गए, कुछ बोला नहीं उन्होंने। फिर रामानुजाचार्य ने कुरेश से कहा, कुरेश बोलो, जवाब दो, क्यों नहीं बोलते तुम? तुमने जो रंगनाथ जी से वरदान मांगा कि मैं प्राण त्याग करना चाहता हूं, ऐसा क्यों तुमने मांगा, क्या उद्देश्य था तुम्हारा ऐसा वरदान मांगने के लिए? तो कुरेश ने जवाब दिया कि मैं केवल मर्यादा को बनाए रखना चाहता था। मर्यादा को बनाए रखना चाहते थे? क्या मतलब? ऐसे उल्टे सीधे मत बात करो, स्पष्ट रूप से मुझे बताओ कि क्या उद्देश्य था तुम्हारा। तो कुरेश कहने लगे कि मुड़ियदई, ये अलवारों ने लिखी हुई एक कविता है, ग्रंथ है, इसमें यह बताया जाता है कि जो यहां भौतिक जगत से जीव वैकुंठ चले जाते हैं, फिर वो तो चले जाकर वहां भगवान की सेवा में लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भौतिक जगत से उनके छोटे भाई उनका प्राण त्याग करके वैकुंठ आने वाले हैं, ये उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका मतलब है कि बड़े भाई छोटे भाइयों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये मर्यादा के विपरीत है। छोटों को आगे जाकर पहले बड़ों का स्वागत करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वैकुंठ पहले जाना चाहता हूं, ताकि आप जब आओगे तो मैं आपका स्वागत कर सकूं। अगर आप पहले जाओगे तो आपको मेरा स्वागत करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं। तो इस तरह से देखिए विचार कैसे, किस तरह के सोच विचार कुरेश के थे। तो रामानुजाचार्य कहने लगे कि अरे कुरेश, तुम तो जानते हो कि वैकुंठ में ये कोई भेद नहीं रहता, ये सारे जो भेद हैं वो इस भौतिक जगत में रहते हैं। कौन गुरु है, कौन शिष्य है, कौन गुरु भाई है, कौन माता पिता पुत्र, ये सारे इस दुनिया के संबंध हैं। वहां जाकर तो ये संबंध रहेंगे नहीं, वहां जाके हम कहां जाएंगे, किस तरह से भगवान की सेवा करेंगे, वैकुंठ में किस लीला में भाग लेंगे, वो हम नहीं मालूम। लेकिन फिर भी तुम ये चाहते हो कि ये संबंध वैकुंठ में भी बना रहे, इसके बारे में ये सुनकर मैं निरुत्तर हो गया हूं। तुम्हारे जैसे भक्त मैंने नहीं देखा कुरेश। तो रामानुजाचार्य इस कुरेश की भावना को सुनकर उनसे रहा नहीं गया और फूट फूट कर रामानुजाचार्य रोने लग गए, उनके आंखों से आंसू आने लगे। और फिर रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य कुरेश को आलिंगन किया और आलिंगन करके उनके कान में हल्के से द्वय मंत्र, जो दीक्षा का मंत्र था, वो कह दिया। और फिर रामानुजाचार्य ने घूमकर वहां जो उपस्थित भक्त थे उनको बताया कि आप आश्चर्यचकित न होना कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जो द्वय मंत्र है, जो रोज उच्चारण करने का मंत्र है, ये इनके लिए, मतलब वैष्णव के लिए, पोषण है। जैसे हमारे लिए हरे कृष्ण मंत्र जो है ये रोज का पोषण है। जैसे हम एक दिवस भी भोजन नहीं लेते तो हमें कमजोरी महसूस होती है, उसी तरह से अगर हमने एक दिवस भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं किया तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हरिनाम के उच्चारण के प्रति कभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो व्यक्ति रोज कम से कम 16 माला नहीं करता है, वो हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार हो गया है। इसलिए हमें भी अच्छे तरह से यह हरे कृष्ण महामंत्र का रोज नित्य नियम के तौर से उच्चारण करना चाहिए। फिर रामानुजाचार्य समझाने लगे कि ये तो रोज लेते हैं, तो आज भी मैं ये दे रहा हूं क्योंकि ये आखिरी बार अभी कुरेश को मेरे मुख से इस मंत्र का आनंद मिले, इसलिए। हालांकि रोज बार बार ये कुरेश लेते रहते हैं। जिस तरह से एक राजकुमार जो होता है, जब वो भोजन लेता है, फिर भी उस भोजन के बाद वो मांगता है मुख शुद्धि। मुख शुद्धि के लिए जो अलग अलग चीजें, तांबूल इत्यादि होता है स्वादिष्ट, हालांकि उसने हजारों बार पहले से खा लिया होता है, लेकिन फिर भी इसका आनंद लेता है। तो ठीक इसी तरह से ये भी राजपद में जा रहे हैं, राजा की तरह अभी जाने वाले हैं वैकुंठ, तो उनके लिए आखिरी बार मेरे मुख से इस मंत्र का आनंद देना चाहता हूं। फिर रामानुजाचार्य का हृदय फिर से भर आया और कुरेश की ओर देख के बोलने लगे कि हे पुत्र, मैं तुमसे अलग कैसे हो सकता हूं? क्या तुम अपने गुरु के ऊपर कृपा नहीं दिखाओगे? क्या तुम अपने गुरु को भी वैकुंठ नहीं ले जाओगे? या तुम गुरु को इधर ही भौतिक जगत में तड़प के छोड़ के अपना खुद वैकुंठ जाना चाहते हो? तुम्हारे गुरु के बिना तुम कैसे अकेले वैकुंठ में जाके आनंद ले सकते हो? जब मैं यहां हूं, तुमने विचार कैसे किया कि तुम्हें वैकुंठ जाना है? तो कुरेश ने अपना सर झुकाया और कहा कि मैं इस बात को भूल गया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उस समय रामानुजाचार्य उठे और फिर कड़क आवाज में बोलने लगे, मैं रंगनाथ जी के पास जाऊंगा और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कुरेश को रोक दीजिए, मत भेजिए कुरेश को। अगर रंगनाथ जी तुमको वरदान दे सकते हैं तो मुझे भी दे सकते हैं। तुमने मांगा कि मुझे वैकुंठ जाना है, प्राण त्याग करना है, तो मैं भी मांग सकता हूं कि मत भेजिए। तो निकलने वाले थे कमरे से, लेकिन उस समय रामानुजाचार्य के मन में और एक विचार आया और रुक गए और रोक के कहने लगे कि नहीं, ये ठीक नहीं है। भगवान का जो निर्णय होता है वो अटूट है। मेरी ये मजाल कि मैं जाके भगवान का निर्णय बदलूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे समझना चाहिए कि यह भी भगवान की इच्छा है, नहीं तो ऐसा कैसे हुआ। तो ठीक है, जो भी है, जो भी कुरेश की इच्छा है, जो भी रंगनाथ की इच्छा है, वही सही, मुझे इसे स्वीकार करने लाना चाहिए। फिर रामानुजाचार्य फिर से कुरेश के पास लौट कर आए और कहने लगे, कुरेश मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूं। हां, मैं जान सकता हूं कि वैकुंठ में रहने वाले भगवान ने तुम्हारा मन इतना आकर्षित कर दिया है, हालांकि यहां पर रंगनाथ जी के अंदर सारे सर्व आकर्षक गुण हैं, लेकिन इनके अलावा ये भगवान को छोड़कर तुम वहां जाना चाहते हो। तो किस तरह से तुम रंगनाथ जी से अपने आप को अलग कर सकते हो? वो वैकुंठ के भगवान और वो वैकुंठ के निवासी कितने भाग्यशाली हैं कि वो तुमको प्राप्त कर रहे हैं, और इधर यहां के सोए हुए भगवान रंगनाथ और हम सब, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि तुम हमारे बीच से अभी दूर जाने वाले हो। लेकिन फिर भी जो भी भगवान की इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, वही सही। मैं तुम्हारा मन बदलने का कोशिश नहीं करूंगा, तुम्हारा मन विचलित करने की कोशिश नहीं करूंगा। धन्य हो तुम्हारा जीवन, धन्य हो कुरेश। मैं अभी तुम्हें अनुमति देता हूं कि तुम जाओ, वैकुंठ जाओ, वहां जाके राज करो। और फिर से आंखों में आंसू लेकर रामानुजाचार्य ने कुरेश से आलिंगन किया और उनका पीठ के ऊपर अपनी उंगलियां फिराने लगे। मैं तुम्हें नमन करता हूं हे कुरेश, और अब तुम, मेरी पूरे हृदय से अनुमति है तुम्हारे लिए, अब तुम जा सकते हो। कहां जा सकते हो? वैकुंठ। और फिर कुरेश का हृदय भर आया था, उनके मन में एक भी शब्द बाहर नहीं निकल सका। वो सीधे रामानुजाचार्य के चरणों में पड़े और उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे, और रामानुजाचार्य ने तुरंत उनको उठाया, और फिर कुरेश ने उनके चरण कमलों को अपने छाती पर रखा और उनसे निवेदन किया कि मुझे आपके चरण कमलों का जल चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने बड़े गंभीरता से धीरे धीरे से अपने चरणों का जल लेकर कुरेश को दिया, और फिर वहां से रामानुजाचार्य और कुरेश निकल पड़े। तो रामानुजाचार्य कुरेश रास्ते में जा रहे थे, तो रामानुजाचार्य अपने आश्रम में गए और कुरेश अपने घर के सामने रुक गए, और कुरेश ने अपने पत्नी को बुलाया, अंडाल अम्मा, और उनको बुलाकर उनसे पूछा कि आपकी कोई अभी इच्छा है। देखिए, उनकी पत्नी भी कितनी महान थी, वो भी कितनी महान वैष्णवी थी। उन्होंने कहा, जो आपकी इच्छा है वो मेरी इच्छा है, मेरी और कोई निजी इच्छा नहीं है। और फिर तुरंत अपने पति के चरणों में पड़कर वो प्रणाम करने लगी। फिर कुरेश अपने दो पुत्रों के पास गए। उनके पुत्रों के नाम क्या थे? पराशर और व्यास। पराशर भट्ट, जिनको भट्टर्य भी कहते थे, और दूसरे थे व्यास या राम पिल्लई। तो दोनों बहुत जोर से रो रहे थे, हालांकि दोनों की उम्र भी काफी हो गई थी, दोनों बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी वो भी कुरेश से दूर नहीं होना चाहते थे। तो कुरेश ने उनको बताया कि अरे देखो, तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, किस लिए रो रहे हो? क्या इस शारीरिक संबंध के लिए कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं? लेकिन जब तुम इस कारण से रोओगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारा आध्यात्मिक जो संबंध रामानुजाचार्य के प्रति है इसका तिरस्कार तुम कर रहे हो। और अगर हमारे आध्यात्मिक संबंध के बल पर तुम रो रहे हो तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से हम हमेशा एक हैं, हम साथ में हैं। इस तरह से तो बिल्कुल शोक नहीं करना। और यह जान लेना कि वैसे रंगनाथ जी और लक्ष्मी देवी ये तुम्हारे माता पिता हैं, उन्होंने तुम्हारा देखभाल किया है पहले से। और इतना होते हुए यह नहीं भूल जाना कि रामानुजाचार्य तुम्हारे उद्धारक हैं। अपनी माता आंडाल के प्रति हमेशा आज्ञाकारी रहना और भक्तों के प्रति अपने मन में भी, वाचा की बात तो दूर है, अपने मन में भी कभी पाप नहीं करना। फिर पराशर और राम पिल्लई और रोने लगे और इस समय कुरेश लेट गए वहां पर, अपना सर रंगनाथ जी के मंदिर की ओर किया और उनका सर जो है उन्होंने अपने पुत्र राम पिल्ले के गोदी में रख दिया और अपने चरण कमल अपने पत्नी अंडाल अंडाल अम्मा के गोदी में रख दिया और इस तरह से अपने मन को पूरी तरह से रामानुजाचार्य के चरण कमलों के ऊपर केंद्रित किया और अपने प्राण त्याग दिए और सीधे चले गए वैकुंठ। उधर खबर पहुंच गई रामानुजाचार्य के पास। रामानुजाचार्य दौड़ के वहां पर आए, पराशर और राम पिल्लई दोनों बहुत शोक कर रहे थे, दुख कर रहे थे। उस समय रामानुजाचार्य ने उनको सांत्वना दी और कहा कि ये तो शुभ घड़ी है, तुम्हारे पिता वापस वैकुंठ चले गए हैं, अब उनको कोई दुख नहीं, ये सड़ने वाला शरीर अब उनको कभी नहीं मिलेगा, अब हमेशा के लिए उनके आराध्य देव भगवान के पास वैकुंठ में वो चले गए हैं। फिर उसके बाद अंतिम क्रियाएं हुई और उसके बाद में सारे भक्तों को वहां के श्रीरंगम के निवासियों को प्रसाद बांटा गया। सारे दिन भर वहां पर उत्सव मनाए गए और केवल उस दिन नहीं, उस सारे महीने के लिए हर रोज उत्सव मनाया गया कुरेश के स्मृति में। और जगह जगह से हजारों की संख्या में लोग आए, केवल भक्त ही नहीं अन्य लोग भी, और ये लोग भी जो गूंगे बहरे अंधे सबको ले आकर उनको भरपूर प्रसाद खिलाया गया। और इस तरह से हरि नाम का संकीर्तन भी बहुत चलता रहा वहां और इस तरह से सारे श्रीरंगम के निवासी कुरेश के वैकुंठ गति या वैकुंठ वापस जाने के अनुष्ठान को मनाने लगे। तो इस तरह से कुरेश का जीवन, कुरेश का प्राण त्यागना और वैकुंठ चले जाना, रामानुजाचार्य और कुरेश को अलग नहीं किया जा सकता। बल्कि आचार्य बताते हैं कि रामानुजाचार्य न रहते अगर उनके साथ कुरेश न होते। कुरेश की वजह से रामानुजाचार्य और इतने सारे चीजें कर पाए और रामानुजाचार्य के प्रति हृदय में इतना प्रेम था कुरेश के प्रति जो विरला ही दिखने में आता है। और बताया जाता है कि एक बार उनके एक शिष्य ने, जैसे अंधपूर्ण ने कविता लिखी थी रामानुज अष्टोत्तर स्तोत्र, उसी तरह से और एक शिष्य ने लिखी थी। और जब ये रामानुजाचार्य को दिखाया गया तो उन्होंने पढ़ा और उसको इनकार कर दिया कि ये ठीक नहीं, क्योंकि इसमें कुरेश का नाम नहीं है। फिर और एक लिखा गया, और एक कविता लिखी गई जिसमें कि कुरेश के बारे में भी लिखा गया। फिर रामानुजाचार्य ने उसको स्वीकार किया और फिर ये आलवारों के ग्रंथों के साथ में दिव्य प्रबंधम नाम के ग्रंथ में ये जोड़ दिया गया। तो इतने महान थे कुरेश। श्री कुरेश महात्मा की जय, श्री रामानुजाचार्य की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो किसी के कोई प्रश्न है? कुरेश के वैकुंठ गमन की कथा सबको अच्छी लगी? भक्त लोग अपने प्राण त्यागते समय भी बहुत कुछ हमको सिखाते हैं, न केवल जीते समय कैसे प्राण त्यागना चाहिए वो भी हमको सिखाते हैं। तो शायद अभी भोग चल रहा है, अभी कितने समय है जरा।
आचार्य के शिष्यों ने किसी ने क्या उनके जीवन चरित्र के ऊपर कुछ ग्रंथ लिखे हैं क्या?
कई ग्रंथ हैं, इनके बारे में हम चर्चा आखिरी दिन करेंगे, जब आखिरी प्रवचन होगा रामानुजाचार्य के ऊपर, तब संक्षेप में उनकी शिक्षा क्या थी और उनके बारे में ग्रंथ क्या हैं, उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।
मेरे माता जी ने कहा था कि श्री बालाजी को बालाजी दूध चुरा कर पीते और ग्वाले ने मारा था चीन पे, इसलिए उनको खून आया था। तो आप बता रहे कि वो तालाब बनाते तो उनको मारा गया था इसलिए खून आया था?
नहीं, वो अलग लीला है, वो कपाल पे उनको लगा था, इसलिए कपाल पे उनका चंदन का तिलक लगता है ना, बड़ा वाला।
अच्छा,
वो अलग घटना है, अलग लीला है वो। ये यहाँ पर लगा नीचे थोड़े पर, और वो वहां कपाल में लगा था।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? और